नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच दो दिन से जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। दोनों पक्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम पर विशेष चर्चा कराने की सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चर्चा की शुरुआत करने की संभावना है। बैठक में 9 और 10 दिसंबर को लोकसभा में चुनावी सुधारों पर 10 घंटे की चर्चा आयोजित कराने का भी फैसला लिया गया। इससे पहले कल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद लगातार सदन में नारेबाजी कर रहे थे, जिससे कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि संसदीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी दल चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तिरुवनंतपुरम की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति नौसेना दिवस 2025 समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति आज नौसेना के परिचालन प्रदर्शन का अवलोकन भी करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परिचालन प्रदर्शन में नौसेना की ताकत को दर्शाया जाएगा। इसमें 19 प्रमुख युद्धपोत और 32 विमान शामिल होंगे।
तिरुवनंतपुरम के पास स्थित शंगमुगम बीच पर भारतीय नौसेना के परिचालन प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रपति आज दोपहर तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी और वहां से सीधे शंगमुगम बीच रवाना होंगी। MH-60R हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति को भव्य सलामी दी जाएगी। इसमें नौसेना की शक्ति और युद्ध तत्परता का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में 19 प्रमुख युद्धपोत और 32 विमान भी हिस्सा लेंगे। इनमें युद्धक और निगरानी विमान भी शामिल हैं। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति लोकभवन जाएंगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलुरुथ्वी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के साहस और उपलब्धियों का सम्मान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोकभवन और लोकनिवास किया जा रहा है। उन्होंने इसे विकसित और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में राष्ट्र की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय IDEA की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय IDEA का अध्यक्ष पद संभालेंगे। इस अवसर पर श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये भारत के सभी नागरिकों और चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है।
भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व
स्टोरी के बीच में आपको मना कर रहा था पढ़ते पढ़ते।
और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल IDEA के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आगामी यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई समझौते होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि S-400 और SU-57 रूस के राष्ट्रपति की यात्रा के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। और खेलों में भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। रोहित की अगुवाई वाली भारतीय टीम शुक्रवार को चेन्नई में क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से खेलेगी। वहीं दूसरी ओर महिला FIH जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत आज अपने दूसरे पूल मैच में जर्मनी से प्रतिस्पर्धा करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।